ओम शांति। अभी जो क्लास है वो क्लास का टॉपिक सुनने से पहले एक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद टॉपिक क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, सभी एक एक आना है, लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट फर्स्ट। यहां से एक एक आना है, एक एक करने के बाद नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, तो क्या करना है, पहला आना है यहाँ पे, जग ग्लास दो कटोरे रखा है, इसमें खाली कटोरे में पानी डालना है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी आना है, खाली कटोरे में पानी डालना है, खाली कटोरे में पानी डालना है, इंस्ट्रक्शन क्लियरली सुनिए। फिर नेक्स्ट मार्कर लेके बोर्ड पे जाना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है, फिर जाना है बस। ठीक है, एक एक आना है, करके जाना है। फर्स्ट पर्सन, सबका हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने इंस्ट्रक्शन था खाली कटोरे में पानी डालना है, दो कटोरे है, दो कटोरे में पानी डालना था। अगर खाली नहीं है तो खाली करके पानी डाल के करना है। तो सभी ने एक एक में किया, ऐसा भी हम कर सकते हैं, पानी को ग्लास में डाल के ग्लास से फिर वापस हम डाल सकते थे। कटोरी नहीं, एक कटोरी मैंने नहीं बोला, कटोरी खाली कटोरी में पानी डालना है बस, इसलिए मैंने कहा। सॉरी, मेरा कटोरा, अच्छा अच्छा, सॉरी मेरा हिंदी मिस्टेक है। सॉरी, मुझे प्लूरल में कटोरी के क्या बोलना है मुझे पता नहीं। अच्छा ओके, वो भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स, पहला जिन्होंने बॉक्स ड्रॉ किया है वैसे ही सब, लेकिन बीच में तीन लोग थोड़ा अलग सोचा है, अच्छा है। बाकी सब क्या है, लाइन पे ड्रॉ करना ये सब, इसका रीजन पीछे क्या है उसके बारे में आगे से श्याम भाई बताएंगे।
ओम शांति। ये जो अभी हमने एक्टिविटी की, इसका नाम जो है 100th मंकी इफेक्ट इसे कहते हैं। तो जो जिसे कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक काम करता है तो उसका देखा देखी ही बाकी के लोग सारा काम करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया था कि कटोरी में पानी डालना है, ठीक है, वो उन्होंने कहा नहीं कि दोनों कटोरी में डालना है या एक में, कटोरी में पानी डालना है। तो हर कोई आके कटोरी में पानी डाल रहा है और ऑलमोस्ट सभी ने उतनी ही क्वांटिटी में पानी डाला, किसी ने थोड़ा कम ज्यादा किया होगा, लेकिन सभी ने एक दूसरे को देख के कि उसने कितना पानी डाला है मुझे भी उतना ही पानी डालना है। और दूसरा ये था कि दूसरी कटोरी थी भरी हुई, उसको खाली करके उसमें भी पानी हम डाल सकते थे, लेकिन दूसरी कटोरी किसी ने खाली नहीं की और उसी कटोरी में पानी डालते जा रहे हैं हर कोई। और ग्लास का उपयोग किसी ने किया, केवल एक ही ने ग्लास में पानी डाला, और वो भी ग्लास में डाला, कटोरी में नहीं डाला। तो यहाँ पे जो कहते हैं कि 100th मंकी इफेक्ट, ये जो जापान के साइंटिस्ट है उन्होंने कोशिमा आयरलैंड पे एक एक्सपेरिमेंट किया था 1950-52 के आसपास। तो उन्होंने उस समय जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, शकरकंद जो होते हैं, उसको मिट्टी लगा के और वो समुन्द्र के किनारे बीच में पानी में डाल दिया था, समुद्र के किनारे। तो उन्होंने देखा कि एक बंदर जो है आके उसने उस शकरकंद को, स्वीट पोटैटोस को धुलाई किया और खाया, तो उसका देखा देखी बाकी के भी जो बंदर है वो भी उसको करने लगे। लेकिन जो बूढ़े बंदर थे, जो ओल्ड एज वाले बंदर थे, उन्होंने वो नहीं किया, केवल जो उसी के उम्र वाले बंदर थे उन्होंने उस चीज को फॉलो किया और उसको करना शुरू किया। और बाद में फिर ऐसे हुआ कि जो सवा बंदर था उसने जैसे ही ये 100th सवा बंदर जो था, जैसे ही उसने ये किया तो उसके बाद में साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो दूसरा टापू था, द्वीप जो था एक आयरलैंड से दूसरे आयरलैंड पे, वहां के बंदरों ने भी सेम टू सेम वैसे ही करना शुरू किया। तो अभी उन्होंने ये सोचा कि ये बंदर यहां से तैर के वहां पे गया और वहां पे जाके उसने सिखाया, या उन्होंने अपने आप कैसे करना शुरू कर दिया वहां पे। वो जिसे बताया कि जो बूढ़े बंदर थे वो उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो जो उनकी उम्र के जो बंदर थे वही उस चीज को फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जो गेहूं के दाने होते हैं वो उन्होंने समुन्द्र के किनारे जो रेत होती है उस रेत में उन्होंने मिक्स कर दिया था, और उन्होंने देखा कि जो बंदर है पहले पानी में जाते नहीं थे लेकिन वो खाने के लालच में थोड़ा थोड़ा पानी में भी जाना शुरू हो गए। और उन्होंने बंदरों ने क्या किया, वो जो रेत में गेहूं के दाने मिक्स है उन्होंने वो पानी में डाला, उसके बाद में रेत नीचे बैठ जाती है और गेहूं के दाने ऊपर तैर रहे थे, फिर उन्होंने वो गेहूं के दाने लेके खाना शुरू किया। तो उसके बाद में उन्होंने साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि उसके बाद जो कोई शक्तिशाली बंदर है उनका या कोई ग्रुप लीडर है, उन बंदरों का भी जो लीडर होता है, तो वो क्या करता था कि जो ये बंदर सारे गेहूं के दाने साफ करते थे खाने के लिए तो वो सबसे छीन लेता था और खुद खा लेता था। तो उन्होंने बाकी के बंदरों ने वो ऐसा करना बंद कर दिया, वो सफाई करके जो खुद के खाने के लिए निकालते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं और सब कर रहे हैं और खा तो ये रहा है, तो उन्होंने वो करना बंद कर दिया। तो ये दो जो उन्होंने रिसर्च किया था साइंटिस्ट ने, और उसके बाद में 1980 के आसपास ये पेपर में आया था। तो उनका कहने का, ये जो रिसर्च करने का मतलब ये था कि जो हम करते हैं तो हमको देखा देखी ही बाकी के लोग करना शुरू कर देते हैं, और इसको जो नाम दिया है 100th मंकी इफेक्ट, वो इसलिए दिया, इसको 50th मंकी इफेक्ट या 10th मंकी इफेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन 100th मंकी इफेक्ट इसलिए कहा गया कि साइंटिस्ट ने देखा कि जैसे ही 100वें बंदर ने ये किया उसके बाद में बाकी के बंदरों ने अपने आप ही अप्लाई करना शुरू कर दिया, उसको किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने उनको बताया नहीं कि ऐसे करना है, केवल एक दूसरे का देखा देखी ही उन्होंने अपने आप ये सब करना शुरू कर दिया, वातावरण बन गया। तो जैसे बाबा भी कहता है कि आप सब पूर्वज हो इस संसार के, तो हम जो करेंगे हमको देखा देखी ही बाकी के लोग करना शुरू कर देते हैं, दो बोथ, हाँ, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं या पाप कर्म जिसे हम कहते हैं अच्छा कर्म, तो मैं ये मानता हूं कि पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वो पाप कर्म होता है जो हम खुद के लिए करते हैं और उसकी सजा केवल हमको ही मिलेगी, और एक वो पाप कर्म होता है कि जो हम करते हैं और हमारी देखा देखी बाकी के लोग करते हैं, या हम एटमोसफियर को या वायुमंडल को खराब करने के निमित्त बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पाप का जो बोझ जो है हमारे पे ज्यादा चढ़ रहा है, एक तो है कि हमने पाप किया, हमारे में लोभ की आदत है या कोई आदत है केवल हमारे अंदर है और वो हमारे तक ही सीमित है, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई पाप अगर करता है, किसी को धोती पहनने की आदत है या कोई भी ऐसा पाप कर्म है जिसकी वजह से एटमोसफियर खराब हो रहा है, परचिंतन की आदत है जिसकी वजह से एटमोसफियर खराब हो रहा है, तो उसका जो है ज्यादा बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। तो जैसे बता रहे थे कि ये साइंटिस्ट ने ऐसा रिसर्च किया, इसके पहले नहीं, इसके बाद में महर्षि योगी जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, महेश योगी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1985 के आसपास अमेरिका में। तो उन्होंने उसमें उस समय 7,000 योगियों को वहां पर बिठाया था, और उनका ये था कि 8 से 11 दिन तक हम रोज इतने से इतने समय के बीच में मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो उस समय उन्होंने देखा कि 4थे या 5वें दिन के बाद में ही सारे दुनिया में, केवल अमेरिका में भी नहीं, सारे दुनिया में जो क्राइम रेट था काफी कम हो गया था, और जो देशों में आपस में झगड़ा हो रहा था, जो दो देशों में कहीं पर भी वो झगड़े के जो ग्राफ जो है काफी कम लेवल पे आ गया था, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह भी हो रही थी, मतलब जो भी गलत काम हो रहे थे वो सारे गलत काम का जो रेशियो जो है काफी कम हो गया था। तो ये उन्होंने, उनका जो मेन मैनेजर जो था उसने, उन्होंने आपस में ही रिसर्च में बताया कि हम जो कुछ करते हैं तो उसका जो प्रभाव जो है सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो ये तो बाहर वालों के हिसाब से उन्होंने अपना रिसर्च किया था और जो बताया था, लेकिन बाबा जी ने जो हमको ज्ञान दिया है, तो बाबा हमेशा ये कहता है कि अपने आप को देखो, हर एक के पीछे उसकी सारी प्रजा है, उसकी सारी राजधानी है, हम जो करेंगे हमको देख के बाकी के लोग भी करेंगे। तो जैसे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उसमें सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक बंदर ने किया, उसके बाद में दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, और हर किसी ने करना शुरू किया, और 100वें बंदर के बाद में ये ऐसे हो गया कि हर एक ने ऑटोमेटिक उसको एडॉप्ट कर लिया। बराबर, तो उनका ये था कि ये जो, और जो दूसरे आयरलैंड के बंदर जो थे उन्होंने इस बात को कैसे सीखा, उनको तो किसी ने बताया नहीं, तो उसके दो ऑप्शन उन्होंने रिजल्ट कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, कि एक तो ये है कि जो बंदर पहले पानी में जाने से डरते थे, पानी में जाते नहीं थे, लेकिन वो शकरकंद और गेहूं के इसमें खाने के चक्कर में थोड़े थोड़े पानी में जाना शुरू हुए। उन्होंने केवल पानी में हाथ डालना शुरू किया, बाद में थोड़ा और गहरे पानी में जाना शुरू किया उन्होंने। तो ये किया था कि उनका जो डर था पानी से वो निकल गया, एक ये हो सकता है। और उसमें से शायद कोई बंदर तैरना सीख गया हो और वो दूसरे आयरलैंड पे गया हो और उसने वहां के बंदरों को ये सिखाया हो, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो दूसरे आयरलैंड के बंदरों ने कैसे सीख लिया। ये कर तो एक जगह के बंदर, एक आयरलैंड के बंदर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह के बंदरों ने कैसे सीखा। तो एक उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ऐसे भी हो सकता है शायद। और दूसरा ये था, दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, ये जो सारा दुनिया जो है एक ही माइंड बेल्ट से कनेक्टेड है, एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, जैसे कई बार हमने क्लास में सुना यूनिवर्सल, इससे हम सारे कनेक्टेड है। तो वो जो माइंड है उसके थ्रू जैसे भी वाइब्रेशन बनता है, तो वही वाइब्रेशन दूसरी जगह के सेम इसके जो कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने आप कैच कर लेते हैं। जैसे उन बंदरों ने किया, एक जगह के बंदरों ने आयरलैंड पे किया, तो दूसरे जगह के बंदरों ने अपने आप उस चीज को कैच कर लिया। उनका दो कंक्लूजन था, एक तो जाके सिखाया होगा लेकिन वो किसी ने देखा नहीं कि वो सचमुच जाके सिखाया या नहीं सिखाया। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि सब जो है, जैसे बताया कि एक ही माइंड बेल्ट से सारे कनेक्टेड है, एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, तो अपने आप दूसरे जगह के बंदरों को वाइब्रेशन चले गया होगा और उन्होंने अपने आप ही वो करना शुरू कर दिया होगा। और दूसरा जो उन्होंने इसमें देखा कि जो बंदर पानी में जाने से डरते थे वो बंदर पानी में जाना शुरू हो गए, उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई। तो हम कुछ भी काम, हाँ, तो फायदा होता है, तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है हर चीज के। जैसे बताया अच्छा कर्म भी होता है, बुरा कर्म भी होता है। अगर हम एक बार कोई बुरा कर्म करते हैं और किसी को पता नहीं पड़ता या हमको लगता है कि कोई बात नहीं सब कर रहे हैं, उसमें हमने भी किया तो क्या हो गया करके, तो धीरे धीरे हमारी जो हिम्मत बढ़ते जाती है। तो अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो वो, और अगर पॉजिटिव वे में हम करते हैं तो अगर हमको देख के बाकी के लोग भी करते हैं तो हमको उससे खुशी होती है कि देखो हमको देख के बाकी के लोगों ने सीखा। तो ये था सेकंड वाला। उसमें जो थर्ड जो उन्होंने देखा बताया कि एक ही फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट होती है जब लोग एक ही प्रकार के विचार करते हैं या सोचते हैं, तो उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और वो एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे हम थर्ड संडे को मेडिटेशन डे होता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, तो इसके पहले जहां तक मुझे याद है कि एक ही संकल्प नहीं दिया जाता था लोगों को, केवल इंस्ट्रक्शन ये होता था कि आज थर्ड संडे है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, और सभी योग करेंगे। लेकिन अभी कुछ समय से है या कुछ सालों से हर एक को एक ही संकल्प दिया जाता है। तो वो इसलिए दिया जाता है कि जब हम एक ही संकल्प में टिकेंगे तो उस समय उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। जैसे विनाश के लिए बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें कही है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जब सब अलबेले हो जाएंगे, जब सभी के दिमाग से भी निकल जाएगा कि विनाश भी होना है, उस समय विनाश होगा। लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा है कि जब सभी ब्राह्मणों का एक ही संकल्प होगा कि बस अब विनाश होना चाहिए, अब पूरा होना चाहिए, अब खत्म होना चाहिए, उस समय विनाश होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हम कोई भी ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके एक ही संगठन में एक ही बात पे विचार करते हैं या एक ही जैसे थॉट क्रिएट करते हैं तो इसका एटमॉस्फेयर पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे कई बार देखते हैं मधुबन में कोई गेस्ट आते हैं या हम जहाँ पानी पीने जाते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये मिनरल वाटर है, बर्तन आदि धुलाई न करें। फिर भी मेजोरिटी देखा यह गया है कि 95% लोग उसे धुलाई करते हैं। उसके बाद में ये होता है कि जो हमने देखा कि जो गेस्ट आए हैं फर्स्ट टाइम मधुबन में आए हैं वो भी वो इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि 99% लोग वहां जाके धुलाई करते हैं। उनके साथ वाले बताते भी है उनको कि यहीं पे लिखा हुआ है कि देखो मिनरल वाटर है, बर्तन आदि धुलाई ना करें, तो वो बोलते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो शायद वहां का एटमोस्फियर ही वैसे बन गया है कि वहां जाते बराबर अपने आप धुलाई करने के लिए जाते हैं लोग। तो ये तो हमने जो यहाँ परमानेंट रहते हैं या बाहर के जो अपने बीके भाई बहने आते हैं उनका एग्जाम्पल बताया है, लेकिन जो बाहर वाले आते हैं तो उनका माइंड अपने आप कैसे चेंज हो जाता है। हाँ देख, नहीं उस समय वो किसी को देख नहीं रहे, वहां पे उनको कोई बताने वाला नहीं, उनको सिर्फ ये कहा है कि भाई आपको पानी पीना तो आप पानी पीजिए और ग्लास लीजिए और चाय पीने चलिए। तो वो पानी पीने के पहले अपने आप ही धुलाई कर लेते हैं ग्लास को, जबकि ग्लास धुलाई करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और उनको किसी ने ये भी नहीं बताया कि आपको धुलाई नहीं करना या ये पानी जो है मिनरल वाटर इसे धुलाई ना करे करके, लेकिन वो अपने आप धुलाई करके पीते हैं और वहां जाते हैं आगे करके। और जो दूसरा हम देखते हैं कि कई जो गेस्ट आते हैं तो वो अपने आप ही व्हाइट कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, उनको कोई बोलता नहीं कि आप यहाँ पे व्हाइट कपड़े पहनो, लेकिन एक दूसरे को देख के ही उनको लगता है कि नहीं हमको भी व्हाइट पहनना चाहिए। अगर वो व्हाइट नहीं पहनते हैं तो उनको कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है या कोई उनको बोलने वाला नहीं कि आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना, लेकिन उसके बाद भी वो खुद ही व्हाइट पहनना शुरू कर, हाँ व्हाइट शॉल हर चीज में ऐसे। हाँ, शॉल का एग्जांपल भी हम जैसे बताने वाला था मैं, कि हम जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो लोग शॉल पैर पे डाल के बैठते हैं, तो उसका क्या रीजन है? अभी दो साल या लास्ट ईयर ये सिंगापुर का भाई था, उसने पूछा, कुछ क्लास के बाद में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसने कहा कि ये जो शॉल पैर पे डाल के बैठते हैं ये क्या नियम है? तो हमने कहा ये कोई नियम नहीं है, उनके पैरों को ठंडी लगती है इसलिए वो शॉल डाल के बैठ रहे हैं उसके ऊपर। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो उस समय क्लास में मुझे बुलाया था और मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, तो उसके बाद में वहां के भाई बहनों ने कहा कि आपने पैर पे शॉल नहीं डाला, तो मैंने कहा कि पैर पे शॉल क्यों डालना है? तो मैंने कहा आपके पैर दिखाई दे रहे थे, तो मैंने पैर है तो दिखाई देंगे, मैंने कहा उसमें क्या है मतलब ऐसे। अभी दुनिया में भी जो बाहर साधु संन्यासी होते हैं वो धोती पहन के लुंगी पहन के मतलब वो करते हैं, तो वो कोई शॉल वगैरह डालते हैं क्या? नहीं। तो एक ने अपने कंफर्टेबल इसके हिसाब से किया और उसी की देखा देखी बाकी के लोगों ने करना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो क्यों कर रहा है करके, लेकिन एक कर रहा है तो उसका देखी देखी हमको भी यह करना चाहिए। हाँ, जो भी है एक ने, क्योंकि ये होता है कि एक है ना, जैसे कि एक व्यक्ति जो काम करता है और बार बार रिपीट करते हैं, सौवे इसके बाद में अपने आप वो चीज जो है उसका एटमॉस्फेयर बन जाता है जैसे, और अपने आप ही लोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको माँ बाप सिखाते हैं कि आपको थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है, सब बातें, लेकिन गाली देने के लिए कोई नहीं सिखाता है, तो छोटा बच्चा कहां से गाली देना सीख जाता है? कि कहीं ना कहीं से सुन रहा है, वो देख रहा है और बार बार वो चीज रिपीट होती जा रही है। ऐसा नहीं कि उसके पहले केवल चार लोगों ने गालियां दी होगी, सुना होगा, उसके पहले भी कई लोगों ने बोला होगा, लेकिन 100 से ज्यादा जहां पे हो जाता है, ऐसे साइंटिस्ट ने जो किया था रिसर्च, तो वहां पे वो अपने आप चीजें क्रिएट हो जाती है और लोग जो है अपने आप ही वो करना शुरू कर देते हैं। इसमें जो हमने सेकेंड ये जो देखा था कि वो जो बंदर जो है उनका जो डर जो है पानी के प्रति वो निकल गया था, तो हम भी अगर कोई गलत काम करते हैं चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो हमारा जो धीरे धीरे जो है हिम्मत बढ़ती जाती है हमारी। अगर अच्छे काम के लिए बढ़ रही हिम्मत तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत काम के लिए हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही है अगर, तो फिर आज नहीं तो कल हमको उसकी सजा मिलनी ही है। उसके बाद जो साइंटिस्ट ने तीसरा जो उन्होंने इसमें देखा था कि वो जो बंदर थे गेहूं के दाने साफ करते थे, और वो जो दूसरा जो उनका शक्तिशाली बंदर था जो उनका लीडर था वो आके खा लेता था, वो उनको खाने नहीं मिलता था, तो उन्होंने वो बंद कर दिया सफाई करना, जो गेहूं के दाने साफ करते वो करना बंद कर दिया उन्होंने। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि कई बार हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसका हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो हम जो है उस काम को करना बंद कर देते हैं। जैसे हम किसी के घर में गए और कोई हमारे घर पे आया और हमने उसको अच्छा चाय पानी पिलाया, अच्छा टोली वगैरह खिलाया, सब कुछ अच्छा किया उसके साथ में, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब उसके घर पे जाए तो उसने भी वैसे ही करना चाहिए। और अगर हम उसके घर पे जाते हैं और उसने हमको कुछ पूछा नहीं, टोली वगैरह केवल पानी पिला दिया या चाय भी ऐसे ही बना के पिला दिया, तो हम सोचते हैं कि देखो वो हमारे घर पे आया था तो हमने इतना अच्छा उसके साथ में अवभगत किया था, लेकिन अब हम उसके घर पे गए तो ये ऐसा कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम उसको आने दो हमारे घर पे, फिर हम भी दिखाएंगे। तो ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को शायद खाना बनाने नहीं आता हो, चाय बनाने नहीं आता हो। आपकी स्पेशलिटी अलग है, आपकी स्पेशलिटी है खाना बनाना, आपको अच्छे से आता है तो आपने उसकी आवभगत किया, उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन उसमें वो स्पेशलिटी नहीं है। हो सकता है उसकी स्पेशलिटी कुछ अलग है, लेकिन उसकी इसको एक वीकनेस को देख के या हम उसके बारे में पूरा नहीं जानते उस चीज को हम देख के हमारी स्पेशलिटी हम क्यों छोड़ रहे हैं, हमारी विशेषता जो है या जो हमारे अच्छे गुण है वो हम क्यों छोड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक दुनिया में जो बुरा काम, जो बुराई बढ़ती है, तो बुरे लोगों के बुराई करने की वजह से बुराई नहीं बढ़ती है, लेकिन अच्छे लोग जो है वो अपनी अच्छाई करना छोड़ देते हैं, या अच्छे लोग जो है उसको अपोज नहीं करते हैं, बुरे लोगों का अपोज नहीं करते, वो शांति से बैठे रहते कि कोई बात नहीं चलने दो, तो उनके वजह से बुराई बढ़ती है। बुरे लोग तो अपना काम कर ही रहे, लेकिन अगर अच्छे लोग उसको अपोज करें या उसको वो अपनी आदत अच्छी आदत नहीं बिगाड़े तो वो चीज नहीं होगी। जैसे कहा ना कि एक दूसरे को देख के व्यक्ति सीखना शुरू कर देता है कि उसने किया तो ठीक है, मैंने भी किया तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तो वो जो बंदर थे उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है खुद जो धुलाई करके खाते थे वो उन्होंने करना बंद कर दिया, क्योंकि हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ब्राह्मण इसमें भी कई ऐसी बातें होती हैं कि हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें, हमारी भावना जो है खत्म हो जाती है। जैसे कई बार सेंटर्स पे भी हम देखते हैं कि गुरुवार का जो भोग होता है तो उसमें आजकल पैकेट में ही सबको भोग बना के देते हैं, पहले कई जगह पे, लेकिन पहले ऐसे होता था कि प्लेट्स में सबको एक साथ में सर्विंग करते थे, तो एक सेंटर पे हो सकता है कि वहां पे हैंड्स कम हो उस दिन, या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या पानी का प्रॉब्लम वहां पे चल रहा हो, तो उन्होंने ये किया होगा कि हम पैकेट बना के सबको दे देंगे और हर कोई अपने जगह पे अपने हिसाब से खा लेंगे जहां पे भी उनको खाना है। लेकिन बाकी के सेंटर्स वालों को पता नहीं, तो बाकी के सेंटर्स वालों ने भी क्या करना शुरू कर दिया कि हर कोई पैकेट में ही बना के देना शुरू कर दिया कि भाई पैकेट लो और ठीक है करके। लेकिन हाँ, लेकिन उसके पीछे क्या ये है, कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं। एक ने किया तो बाकी के लोगों ने भी करना शुरू कर दिया कि क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वही जब हम पहले लोगों को देते थे प्लेट में, तो उस भावना से देते थे, वो लोगों को लेते समय भी लगता था भाई हमारा घर है, हमारा परिवार है, उस समय से हम दे रहे। अगर हम किसी के घर में जाएं और वो हमको पैकेट में खाना दे रहे, तो हमको कैसे लगेगा? तो हम मतलब कोई रॉन्ग वे में नहीं लेना, मैं जस्ट एक बता रहा हूं कि एक जो करता है तो उसका देखा देखी बाकी के लोग भी करना शुरू कर देते हैं उसको, वो ये नहीं सोचते कि उसके पीछे रीजन क्या है ऐसे। और जो उसमें नेक्स्ट जो उसमें इन्होंने साइंटिस्ट ने देखा कि जो बूढ़े बंदर थे उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, एक ही उम्र के जो थे बंदर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तो बड़े बंदरों ने जो थे एज ओल्ड एज वाले उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि या तो उनमें सीखने की इच्छा नहीं होगी कि अभी तो क्या करना है, जैसे चल रहा है बस चलने तो बहुत कर लिया, बहुत देख लिया। तो यहाँ पे भी हाँ वो सोचते होंगे कि भाई ये तो क्या नए नए हैं, इनको बस थोड़ा उमंग उत्साह, थोड़ा दिन करेंगे फिर हो जाएगा पूरा इनका भी ऐसे। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि जो ज्यादा एजेड हो जाते हैं या ये, तो उनके संस्कार या तो ऐसे कड़े हो जाते हैं या तो उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि बहुत हमने करके देख लिया कोई बात नहीं अब करने दो इनको, देखते हैं ये कितना दिन करते हैं। तो एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि उनमें सीखने की इच्छा नहीं है, उनको ये लगता है कि हमको सब कुछ आता है, हमें सब कुछ पता है, ये क्या हमको सिखाएंगे, अगर हमने बाल धूप में थोड़ी सफेद किए ऐसे, तो उनको ये लगता होगा। तो जो बंदरों में भी ये टेंड हुआ कि जो बूढ़े बंदर थे उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस चीज को एक्सेप्ट न करने का कई कारण हो सकता है। जैसे बताया कि उनको लगता होगा कि जरूरी नहीं है, ये कर रहे नए नए लोग हैं, इनमें नया उमंग उत्साह है, करने दो उनको। और दूसरा ये होगा कि उन्हें सीखने की इच्छा नहीं होगी उनमें कि क्या करना है सीख के, अभी तो बस जाना है, बस अभी थोड़ा समय बचा है ना। तो ये ऐसे हो गया। तो एक जैसे करता है उसको देख के बाकी के लोग भी वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि बॉक्स बनाना है आपको एक, तो बॉक्स कैसे भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो लोगों ने एक ही जैसा ऑलमोस्ट बनाना शुरू किया, जिसमें थोड़ी क्रिएटिविटी है, उन्होंने अलग ढंग से थोड़ा बनाया। पानी का भी जैसे बताया कि कटोरी है भरी हुई, आप उसको खाली करके उसमें पानी डाल सकते थे या पूरा कटोरी भी भर सकते थे, लेकिन किसी ने पूरी कटोरी नहीं भरी, एक ने जो किया बाकी के लोगों ने भी कोशिश की, नीचे गिर गया, लेकिन उसके बाद भी भरा नहीं ना उसको, फिर वो डर गए वहां पे, कह रहे ये क्या हो रहा है करके। तो कहने का यही मतलब है कि जो एक व्यक्ति करता है उसको देख के बाकी के लोग भी उसको करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक ने खाली नहीं किया तो दूसरे ने सोचा कि खाली करने की नहीं, पर उसमें भरने के जब खाली भी तब किया कि जब वो पूरा भर गया था, उसमें जगह नहीं थी पानी डालने के लिए, तब खाली किया। बाकी लोग हर कोई उसी में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे थे कि नहीं ठीक है ना, बाकी के लोग भी वो कर रहे तो हमने भी किया तो क्या हो गया। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब यही है कि जो इन्होंने रिसर्च किया और बाबा भी हमको बताता है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका प्रभाव जो है सारी दुनिया पे पड़ता है, केवल हमारे ब्राह्मण परिवार पे नहीं, सभी पे पड़ता है। तो अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमको ये सोच के करना है कि हम किसको देख के फॉलो कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बताते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, उन्होंने किसको फॉलो किया, तो उन्होंने केवल ये सोच के किया कि शिव बाबा मुझे जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, और मैं जो हूं सबके आगे निमित्त हूं, एक एग्जाम्पल हूं, मैं जो करूंगा मुझे देखकर और भी करेंगे। तो हमको ये देख के करना है कि हम कोई अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ काम कर रहा है, जैसे बताया कि शॉल का एग्जाम्पल दिया, जस्ट एग्जाम्पल है ये, तो एक अगर पैर पे शॉल डाल के बैठ रहा है तो जरूरी नहीं कि सभी को वैसे करके बैठना है, हम उसके पीछे रीजन पूछ सकते हैं कि भाई कारण क्या है। जैसे एक क्लास में हमने स्टोरी सुनी थी कि वो यज्ञ करने के पहले बिल्ली को जो है ऊपर बॉक्स में टांगा जाता था, सुना होगा ना कहानी, कि एक जो साधु था उनके आश्रम में बिल्ली पाली थी, तो वो जब यज्ञ करते थे, पूजा आदि करते थे महीने में एक बार या कभी भी, तो वो बिल्ली जो है काफी डिस्टर्ब करती थी उनको बीच बीच में आके। तो उन्होंने क्या किया कि जब भी यज्ञ करते थे या पूजा आदि करते थे तो एक बॉक्स मंगाते थे और उसमें बिल्ली को डाल के ऊपर टांग देते थे ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करे। तो उनका आश्रम बड़ा होते गया और वो साधु महाराज सन्यासी ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन वो प्रथा कायम चलती रही वैसे। तो बाकी के लोग भी जब आए तो उनको भी ये था कि भाई बिल्ली टांगना जरूरी है, तो बिल्ली वो बाजार से खरीद के भी लेके आते थे, बॉक्स खरीद के लेके आते थे और उसमें डाल के ऊपर टांग देते थे। भाई क्यों? तो ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन उसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे कहने का ये है कि हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। हमको ये नहीं देखना है कि हमको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, दूसरे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे पता नहीं कि एक जो करता है उसको देख के अपने आप लोग करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ऐसे इन्होंने बताया कि 100th अगर 100वां व्यक्ति वो करता है तो उसके बाद में वो चीज यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो जाती है, मतलब सर्वमान्य हो जाती है अपने आप, और लोग अपने आप करना शुरू कर देते हैं लोग माने। उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ऐसे करना है। एक ने किया तो ठीक है, उसके पीछे बाकी के लोग भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी कराई इसके पीछे कारण यही था कि हमें एक दूसरे को देखकर समझ के, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ के, जान के पहचान के, बाबा जैसे कहते हैं कि ये परिवार है, तो चाहे मधुबन हो, चाहे सेंटर हो, चाहे कहीं पर भी हो, कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को ठीक से जानकर उसके बाद में हमें करना है नहीं करना है वो करना है। केवल आंखें बंद करके एक दूसरे की देखा देखी करना है या नकल करना है जैसे बाबा। ऐसा व्यक्ति करता क्यों है? एक तो उसके संस्कार है व्यक्ति के, एक व्यक्ति के संस्कार है वो कर रहा है। दूसरा है कि वो उस चीज से बोर हो चुका है, बोरिंग आ गई है। दूसरे व्यक्ति पहले को फॉलो इस दूसरों की नकल इसलिए करते हैं, जैसे बताया कि उनमें भी वो संस्कार भरे हुए हैं, तो संस्कार कहीं ना कहीं पॉपअप होंगे। जैसे समय आएगा, वो सिचुएशन आएगी, तो वो संस्कार अपने आप बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कई बार हम यहाँ पे देख इनसिक्योरिटी भी होती है, लेकिन जो जैसे कहते हैं कि महापुरुष अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं और उस रास्ते पे बाद में दूसरे लोग चल के महान बनते हैं, तो उसमें यह है कि अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमने किया तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, एक तो ये है। और दूसरे उनको ये लगता है कि अगर हम कुछ अलग करेंगे तो लोग हमारे पे कमेंट्स करेंगे, लोग हमारे पे हंसेंगे, लोग हंसेंगे। ये भी है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, जैसे बुद्धि नहीं है तो मतलब ये कि वो कर रहे हैं तो हमने भी किया तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो उनके संस्कार ही वैसे बने हुए। तो अपने आप वो संस्कार जो टाइम आने पे पॉपअप होते हैं और हम अपने आप दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जैसे बताया कि उसके पीछे कारण क्या है, कि मेन तो मैं ये मानता हूं कि हमारे संस्कार ही ऐसे है। जैसे कई बार हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे भाई बहने आते हैं, वो बोलते हैं कि हमको भी ग्रुप ज्वाइन करना है, हमको भी ये है, हमको भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, हमको भी ये करना है। और वहां जाने के बाद फिर उनको पूछते हैं कि आपने उस दिन का क्लास सुना था, तो बोलते कब भेजा था क्या ग्रुप में, नहीं हमारे पास तो कोई क्लास नहीं आता करके। तो एक संगठन होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, और बाहर जाने के बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाता है। तो कोई न किसी को तीव्र पुरुषार्थी बना सकता है, न कोई किसी को जबरदस्ती ज्ञान में ला सकता है, न कोई किसी को इस ज्ञान से निकाल सकता है। हर एक के संस्कार होते हैं, उस हिसाब से हम एक दूसरे को देखते हैं, फॉलो करते हैं और करना शुरू कर देते हैं। जैसे बताते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो बताते हैं कि 33 करोड़ नहीं लेकिन वो 33 टाइप के देवी देवताएं हैं, और हर एक के पीछे उसकी अलग अलग राजधानी है, उसकी अलग अलग प्रजा है। किसी में कौन सी क्वालिटी हाईएस्ट लेवल पे है तो किसी में कोई क्वालिटी विशेषता कम लेवल पे है, लेकिन है सभी में। तो जिसमें जो अच्छी क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी फैलाता है, जिसमें जो क्वालिटी नहीं है या कम है तो दूसरे को देख के फॉलो करना शुरू कर देता है, या उसके नीचे वाले जो है उस चीज को लेके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक्टिविटी थी इसका इसेंस जो था यही है कि हम जो करते हैं हमें देख के बाकी के लोग भी कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना है, लेकिन हम दूसरे को देख के भी उनकी नकल करना ना शुरू करें कि ये ऐसे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब इसके आगे डॉक्टर हेमलता बताएंगे। ओम शांति।
ये जो 100 मंकी इफेक्ट है, क्यों एक को देख दूसरों, एक्चुअली ये है बिहेवियरल चेंजेस का एक इफेक्ट है। एक का बिहेवियर को देख के दूसरों को बिहेवियर कैसे चेंज होता है, इसमें एक्चुअली हमारे अंदर 6 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन, उसमें क्या है, दूसरों को हम देखते हैं, जस्ट देखते हैं, वो देखने के बाद वो जो इंटेंशन है मैं भी ऐसा करूं क्या नहीं, लेकिन देखने करने से पहले हमको अंदर से एक डर होता है नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, ये करेंगे तो मेरा लाइफ में ये बिहेवियर को मैं कॉपी करूंगी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये है फर्स्ट स्टेज, देखने के बाद मैं कैसे करूं, ये है प्री कंटेम्पलेशन बिहेवियर चेंजेस में। सेकेंड स्टेज है कंटेम्पलेशन, देखने के बाद हमारे अंदर इंटेंशन, ठीक है एक बार तो मैं करके देखूं ऐसा, ये है सेकेंड स्टेज। जैसे दूसरों का देख के बाद पहला हम डरते हैं, फिर दूसरा एक बार हम करके देखने से क्या हो सकता है ऐसा। फिर थर्ड स्टेज में प्रिपरेशन, थर्ड स्टेज है डिटर्मिनेशन, ठीक है मैं इसको कॉपी करके करना ही है। सेकेंड स्टेज में कंटेम्पलेशन में करके मैं देखूं क्या हो सकता है ऐसा। थर्ड स्टेज में हम अंदर से इतना दृढ़ होते हैं कि मुझे करना ही है ये बिहेवियर को, या तो जो भी हमारे एक्शन है उसको फॉलो करना ही है, ऐसा हम प्रिपरेशन होते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं। फोर्थ स्टेज में एक्शन करने के लिए शुरू कर लेते हैं, पहले एक दिन दो दिन करते हैं उसके बाद रेगुलर में करने के लिए हम शुरू करते हैं। ये फोर्थ स्टेज कैसा हमारा बिहेवियर ऐसा चेंज होता है एक को देख दूसरे, तो ये है फोर्थ स्टेज एक्शन में। फिफ्थ स्टेज है मेंटेनेंस, ये जो हम एक्शन करते हैं ना तो हो सकता है 3 महीना 4 5 6 महीना तक हम करते हैं, उसके बाद हमको ऐसा कंफर्टेबल फील होते हैं वो बिहेवियर से, वो एक्शंस या तो जो भी हम फॉलो करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम तैयार होते हैं। पहला का जो स्टेज था, जो भी हम दूसरों को फॉलो करते हैं चाहे हो सकता है वो बुरा कर्म होगा गलत या तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमको उस लेवल पे इतना कंफर्टेबल हम फील होते हैं। पहला का जो अर्ली स्टेज पक्का वाला अच्छा वाला स्टेज था उसको जाने के लिए हमको मन नहीं होता है, रिलैप्स टू द अर्लियर स्टेज उसको हम जाने नहीं देते, तो फिफ्थ स्टेज में उसको मेंटेन करते हैं। और लास्ट है टर्मिनेशन, उसके बाद भी कोई लोग है 6 महीने के बाद भी ठीक है ये करना, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ये बिहेवियर को मुझे स्टॉप करना है, पहला जो मेरा आदत थी या तो बिहेवियर था उसको ही मुझे फॉलो करना है, तो उसको टर्मिनेट करके दोबारा स्टार्टिंग से आते हैं। ये टर्मिनेशन ये जो लास्ट स्टेज है सबके अंदर नहीं है, बहुत रेयरली लोग करते हैं। तो ये है ये जो 100 मंथ की इफेक्ट का पीछे का जो साइकोलॉजिकल बेस है ये है। 5 स्टेजेस होता है हमारा, दूसरों को देखे हमारा बिहेवियर को हम चेंज करते हैं ना, फर्स्ट है प्री कंटेम्पलेशन, सेकेंड है कंटेम्पलेशन, थर्ड है प्रिपरेशन या तो डिटर्मिनेशन, फोर्थ है एक्शन और फिफ्थ है मेंटेनेंस, लास्ट है टर्मिनेशन। ये है इसका पीछे कैसे हमारा बिहेवियर स्टेज बाय स्टेज चेंज होता है, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ये है 100 मंकी इफेक्ट। ओम शांति।